प्रस्थान एक आज की हिंदी कहानी। आज की कहानी पर विचार करते समय सबसे पहले मेरे मन में यह सवाल उठता है कि नई कविता की तरह नई कहानी नाम भी कोई चीज है क्या, और हम पाते हैं कि नई कहानी नाम से कोई आंदोलन अभी तक नहीं चला है। इससे क्या समझा जाए कि यह कहानी में कुछ नयापन आया ही नहीं, कि कहानी में जो नयापन आया है वह कविता की अपेक्षा बहुत कम है, कि स्वयं कहानी के विकास क्रम में यह नयापन बहुत स्पष्ट नहीं है, कि कविता की तरह कहानी के नयेपन को अलगाने का प्रयत्न ही नहीं हुआ है, कि कहानी के क्षेत्र में पुरानी प्रवृत्तियां अब कहीं अवशिष्ट नहीं रही जो नई कहानी संज्ञा की आवश्यकता प्रतीत हो। होता यह है कि रूप और शिल्प की नवीनता सामान्यतः लोगों का ध्यान सबसे पहले आकृष्ट करती है, और कहानी में कविता की तरह रूप शिल्प की नवीनता कुछ कम आई है। कारण स्पष्ट है, साहित्य रूप की दृष्टि से कहानी स्वयं बहुत आधुनिक है, वह नवीनता के साथ उत्पन्न ही हुई है। इसीलिए 150 वर्षों के इस छोटे से इतिहास में कहानी के रूप में किसी मौलिक परिवर्तन की न तो संभावना है और न आवश्यकता ही। इसके विपरीत कविता के शताब्दियों पुराने इतिहास की अपनी अंतर्निहित गत्वरता ने काव्य रूपों को बदलने में बहुत काम किया है। इसके अतिरिक्त छंद संबंधी परिवर्तन गद्य भंगिमा के परिवर्तन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। इसीलिए लोगों ने यदि नई कहानी नाम की संज्ञा नहीं चलाई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर भी आज की कहानियों के रूप में परिवर्तन अवश्य दिखाई पड़ता है। शिल्प को लेकर नए प्रयोग करने की प्रवृत्ति आज के कवियों की तरह कहानीकारों में भी है, और कविता की तरह कुछ कहानियां भी केवल प्रयोग के लिए लिखी गई हैं। डायरी और पत्र शैली तो काफी पुरानी है, या यूं कहें कि पुरानी पड़ गई है। इसीलिए प्रयोगशील कहानीकारों ने नए शिल्प का आश्रय लिया है, जैसे कहानी के किसी अत्यंत पुराने रूप का जो अब अप्रचलित हो पुनरुद्धार करना भी एक तरह का नयापन ही है, और किस्सा तोता मैना या इसी तरह के किसी अन्य किस्से की शैली में नए कहानीकारों ने कहानियां लिखी हैं। तस्लीम लखनवी की कहानी किस्सा सियासत बी भटियारिन और एडिटर बुल्ले शाह इसी तरह का नया प्रयोग है, परंतु इसके साथ यह भी सच है कि कहानी के क्षेत्र में कविता की अपेक्षा रूपवादी प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई पड़ती है। इसीलिए कि कहानी में शिल्प प्रयोग की गुंजाइश कम है। शैली के अतिरिक्त कहानी के आंतरिक रूप में भी काफी परिवर्तन हुआ है। इस बीच कहानी का रूप इतना विस्तृत हो गया है कि बहुत से निबंध स्केच और रिपोर्टाज भी कहानी की सीमा में घुसे हैं। कभी कभी इन साहित्य रूपों की सीमाएं एक दूसरे के भीतर इस दूर तक चली जाती हैं कि उन्हें अलगाना कठिन हो जाता है। एक ही रचना कभी स्केच है और कभी निबंध। इसका यह मतलब है कि कहानी में जो चीज पहले कथानक नाम से जानी जाती थी उसमें कहीं न कहीं कोई मौलिक परिवर्तन हुआ है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कथानक की धारणा कंसेप्ट बदल गई है। किसी समय मनोरंजक नाटकीय और कुतूहलपूर्ण घटना संगठन को ही कथानक समझा जाता था, और आज घटना संगठन इतना विघटित हो गया है कि लोगों को अधिकांश कहानियों में कथानक नाम की चीज मिलती ही नहीं। इसी को कुछ लोग कथानक का ह्रास कहते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि ह्रास कथानक का नहीं बल्कि कथा का हुआ है, और जीवन का एक लघु प्रसंग प्रसंग खंड मूड विचार अथवा विशिष्ट व्यक्ति चरित्र ही कथानक बन गया है, अथवा उसमें कथानक की क्षमता मान ली गई है। जो छोटी सी बात पुराने कहानीकारों के लिए अपर्याप्त थी उसी को नए कहानीकारों ने कहानी के लिए पर्याप्त मान लिया है, और फिर उसके भीतर से उन्होंने कहानी के कथानक की विभिन्न सीमतों का विकास किया है। इस दिशा में नया कहानीकार कभी कभी इतना अंतर्गूढ़ हो जाता है कि आज से अंत तक केवल एक बात से बातें निकलती चली जाती हैं, और बातों में से बात का यह निकलते जाना ही इतना मनोरंजक होता है कि एक कहानी बन जाती है। परंतु यह कौशल वही दिखा सकता है जिसके पास बातचीत की उत्कृष्ट कला हो और साथ ही भाषा की बारीकियां भी। इधर के अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं ऐसी ही कहानियों से भरी मिलती हैं। पढ़ते चले जाइए, बातों में रस मिलता जाएगा। जैसे आप किसी टेबल टॉक में शरीक हों या उसके श्रोता हूँ और कहानी खत्म करने पर सोचें तो हाथ कुछ नहीं लगा, लगा तो केवल यह कि कुछ अच्छा अच्छा सा पढ़ा और बस। हिंदी कहानी में यह प्रवृत्ति बहुत कम है। तात्पर्य कि नए कहानीकार का ध्यान अब कथानक शिल्प की ओर नहीं है। वैसे आज भी कुछ कहानीकार नाटकीय अंत वाले कथानकों के श्रेष्ठ करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु वे वही लोग हैं जिनके पास या तो कहने को कुछ नहीं है या फिर जीवन के प्रति जिनका अपना कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं है। आज का जागरूक पाठक केवल कथानक की चरम सीमा से चौंक कर आह्लादित होने वाला भावुक मनुष्य नहीं रह गया है, इसीलिए उसे ऐसे स्थूल उपकरणों में बहला लेना संभव नहीं है। आज बहुत से श्रेष्ठ कहानियां, गो श्रेष्ठ कहानियां बहुत नहीं होती और न है ही, ऐसी मिलेंगी जिनका कथानक चढ़ाव उतारहीन एकदम सपाट है, जिसमें पहाड़ी सड़क की तरह न तो कदम कदम पर आकस्मिक मोड़ मिलेगा और न ऊंचाई निचाई ही। ऐसी कहानियों का सूत्रपात रूसी कहानीकार चेखोव ने किया और यह प्रवृत्ति क्रमशः सारे संसार में फैलती चली गई। कहानी में यथार्थवाद की विजय का यह पहला उद्घोष है। पाठक को अपनी ओर खींचने का यह पुराना साधन हाथ से निकलते ही कहानीकार ने अन्य साधनों की खोज की। कभी उसने अत्यंत मार्मिक प्रसंग खंड की संवेदनीयता का सहारा लिया तो कभी किसी झकझोर देने वाले विचार स्फुलिंग का। इस तरह नए कहानीकार ने अपने अभीष्ट विचार की अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली तथा साभिप्राय घटना प्रसंग का उपयोग किया, जिसकी सारी शक्ति आद्योपांत व्याप्त उद्देश्य में है। ऐसी कहानियों में अंत तक जाते जाते संपूर्ण कथानक एक सारगर्भी विचार के रूप में झंकृत हो उठता है। यह साभिप्राय घटना प्रसंग सर्वथा कल्पित अथवा अविश्वसनीय भी हो सकता है और अत्यंत वास्तविक भी। घटना प्रसंग जितना ही वास्तविक होगा कहानी उतनी ही जोरदार होगी। यशपाल अपने सर्वोत्तम रूप में इस शैली के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। खेद है कि नए कहानीकारों में बहुत कम है जो इधर ध्यान दें और सफलतापूर्वक इसका निर्वाह कर सकें। मोहन राकेश और राजेंद्र यादव ने इस शैली में कई अच्छी कहानियां लिखी हैं। जो कहानीकार इतने जागरूक चिंतक तथा पैने सामाजिक दृष्टि वाले नहीं है, उन्होंने अछूते जीवन क्षेत्रों का सहारा लेकर पाठकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। अपने अपने अंचल या जनपद के लोक जीवन को कहानी में ले आने की प्रवृत्ति इसी का परिणाम है। निस्संदेह इन कहानियों में ताजगी है और प्रेमचंद की गांव पर लिखी कहानियों में एक हद तक नवीनता भी, लेकिन युवक कहानीकारों के हाथ पड़कर एक जनपदीय कहानियां कभी कभी गहरा रूमानी रंग ले लेती है और देखा देखी लिखने वालों के अनसधे हाथों में फैशन का रूप धारण कर रही हैं। फिर भी उम्मीद है कि इस नए उफान के बीच से काफी साफ सुथरी और निखरी हुई कहानियां आएंगी। इन किशोर कहानीकारों के पास एक ही चीज की कमी है और वह है पैनी सामाजिक दृष्टि। लोक जीवन का मुग्ध चित्रण अपने आप में कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है और न साध्य ही। इस सामग्री के आधार पर जागरूक पाठकों का मन ज्यादा देर तक बहलाया नहीं जा सकता। लोक जीवन के अंतर्वैयक्तिक सामाजिक संबंधों की समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये कहानीकार भी प्रौढ़ आंचलिक कहानियां दे सकेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु मार्कंडेय के सोमेश्वर शिवप्रसाद सिंह की कहानियों से इस दिशा में आशा बनती दिखाई दे रही है। कहानियां तो आज प्रतीकवादी भी लिखी जा रही है, लेकिन मालूम होता है इनमें विकास की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसीलिए कुछ एक प्रतीकवादी कवियों को छोड़कर और कहानीकार इधर आने में हिचकिचा रहे हैं। भाषा इधर की कहानियों की काफी बदली है, यह भी कह सकते हैं कि मजी है। यहाँ तक कि हिंदी गद्य का अत्यंत निखरा हुआ रूप आज की कहानी में ही सबसे अधिक मिलता है। कहानी में एक भी फालतू शब्द न आए, इसके प्रति आज का लेखक बहुत सतर्क है और यह शुभ लक्षण है। एक बात यहाँ यह भी याद आती है कि 3-4 साल पहले उर्दू कहानीकार कृष्ण चंद्र की कहानियों के हिंदी अनुवादों के फलस्वरूप हिंदी के नए कहानीकारों में जो एक लहर आई थी, वह सौभाग्य से जल्द ही समाप्त हो गई। कृष्ण चंद्र की विशेषता तो इन नए लेखकों में आती नहीं थी, बस कमजोरियां ही अपने स्फीत रूप में प्रकट होती थी। संभावना के बीज भी यहाँ अवशिष्ट नहीं थे, इसीलिए यह प्रभाव चला गया तो इसे अच्छा ही कहना चाहिए। कुल मिलाकर आज की कहानियों को देखते हुए यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि हिंदी कविता की अपेक्षा कहानी में स्वस्थ सामाजिक शक्ति कहीं अधिक है और आज उपन्यास की तरह कहानी सामाजिक परिवर्तन के लिए जोरदार साहित्यिक शस्त्र का काम कर रही है।